बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, मसीह है यहाँ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो यह बाइबल की अंतिम पुस्तक है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से बार आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जबकि हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर, गांव में, शहरों में, पहाड़ों में आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के निकट बैठे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए, उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, परेशानी हालत में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, अपने वचन के द्वारा उन्हें धैर्य दें ताकि वे इस बात को जानने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे सर्दिस की कलीसिया के बारे में। सर्दिस से प्रभु यीशु कहता है कि वह उसके आने के लिए तैयार रहे, प्रेरितों की शिक्षा में बने रहे और मन फिराए, क्योंकि मेमने के लहू द्वारा जय पाने वाले को वह श्वेत वस्त्र पहनाएगा। प्रभु यीशु उन्हें अपने पिता परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु के लिखे पत्र को देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखे पत्र। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को मैं 19वीं शताब्दी के आरंभ से कलीसिया के उठाए जाने तक की नव जागृत कलीसिया कहता हूँ। यह कलीसिया परमेश्वर के वचन में लौट आई थी। आज असंख्य विश्वासी परमेश्वर के वचन में लौट रहे हैं। मुझे संपूर्ण संसार से पत्र प्राप्त होते हैं और उनसे प्रकट होता है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया में यह युग चित्रित है। मेरे एक मित्र ने फिलाडेल्फिया शहर को देखा है। वह तुर्किस्तान का एक छोटा समृद्ध नगर है। समुद्र तट से लगभग 125 से 150 मील भीतर एक सुंदर घाटी में स्थित फिलाडेल्फिया नगर है। इस घाटी से बहने वाली नदी कोगमिस हर्मस नदी की सहायक नदी है। आज वह एक तुर्किस्तानी नगर है। 4-5 पर्वतों पर बसा यह नगर अति सुंदर दिखाई देता है। फिलाडेल्फिया भूकंप संभावित क्षेत्र है और यही कारण है कि उस क्षेत्र की वृहद जनसंख्या भूकंप और युद्धों के कारण वहां से पलायन कर गई है। पूर्व देश से आने वाले विजेता ने उस शहर की बची हुई जनता का नरसंहार कर दिया था। अतः आज वहां के मूल निवासियों के वंशज नहीं हैं, तथापि इस नगर में आरंभ ही से मनुष्यों का निवास रहा है। मेरे प्रियो, यह नगर यूनानियों के लिए बर्बर जाति का था। यूनानी सब गैर यूनानियों को बर्बर कहते थे, परंतु प्रेरितों के समय यह स्थान यूनानी बस्ती था। वहां एशियाई वातावरण में यूनानी संस्कृति व्याप्त थी। इस नगर को छोटा एथेंस भी कहते थे, क्योंकि वह इस क्षेत्र में होते हुए भी पूर्ण रूपेण यूनानी था। यह एक गढ़ वाला नगर था जो इफिसूस, स्मुरना और पिरगमोन जैसे बड़े नगरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ती शत्रु की सेना को लूटने के लिए बनाया गया था। अन्य सब नगर मुख्यतः सैनिक किले थे जो शत्रु को पश्चिम में बढ़ने से रोकने या उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए बनाए गए थे। मेरे प्रियो, फिलाडेल्फिया एक अति उपजाऊ क्षेत्र है, परंतु मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होता है। वहां फूल पौधे हैं और वे लगभग सब कुछ उगाते हैं। वहां बहुत अच्छे अंगूर उगते हैं। उनके सिक्कों पर वेकस देवता का सिर बना हुआ है। फिलाडेल्फिया नाम बाइबल का नहीं है, जैसा प्रायः समझा जाता है। इस नगर का नाम फिलाडेल्फिया अतालस द्वितीय ने अपने भाई यूमेनेस के प्रेम के कारण भाई के प्रेम का नगर रखा था, क्योंकि वह उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। सन 17 में पूरा नगर भूकंप के कारण नष्ट हो गया था। इसी भूकंप से सर्दिस और उस क्षेत्र के अनेक नगर नष्ट हो गए थे। तिब्रियास उस समय रोम का राजा था और उसने बहुत पैसा लगाकर इन नगरों की पुनः स्थापना करवाई। स्मरना के बाद यह एक और कलिसिया है जिससे प्रभु यीशु को कोई शिकायत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की ओर फिर गए थे। यह एक रोचक बात है कि ये दोनों कलिसियाएं जिन नगरों में थी वे आज भी हैं। कलिसियाएं तो समाप्त हो गई हैं। इस नगर के विषय में मैं आपको कुछ बड़ी रोचक बातें बताना चाहता हूं। वहां आराधनालयों के खंडहर हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी तक वहां कलिसियाएं थी। मेरे विचार में वहां के देखरेख करने वाले मसीही जन हैं। एक दंपत्ति ने मेरे मित्र को पानी लाकर दिया, यद्यपि उसे उनसे बात नहीं कर पाया, परंतु उनकी मुस्कुराहट से वह अधिक गदगद हो गया। और यही मसीही प्रेम का व्यवहार था। आराधनालयों के खंडहर अब भी वहां हैं, परंतु उनका खंभा पद 12 में व्यक्त खंभा नहीं है, जैसा अनेकों का विचार है। गाइड भी आपको वहीं ले जाते हैं। मेरे प्रियो, मैंने इस एक पुस्तक में वहां के एक विशाल रंगशाला का चित्र भी देखा था। अतः जब मैं वहां उस पुस्तक में देख रहा था तो मैंने उस गाइड को, जो मेरे मित्र के पास गया था, कहा कि वहां जाना चाहता हूं। परंतु जब वहां वे पहुंचे तब वहां केवल एक कॉफी की दुकान थी। उस गाइड ने एक व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि वहां एक रंगशाला थी जो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उसका एक खंभा ही वहां पर था और वह भी पेड़ों के बीच में छिपा हुआ था। वहां की सरकार ने उस रंगशाला को क्यों मिटा दिया? जब वहां तुर्क आए तो उन्होंने विश्वासियों का नरसंहार किया और उस प्राचीन सभ्यता का निशान मिटा देने का प्रयास किया कि आज का मनुष्य उन्हें भूल जाए। फिलाडेल्फिया में धर्म युद्ध लड़े गए थे। 1922 में तुर्क और यूनानियों का युद्ध क्षेत्र फिलाडेल्फिया ही था। वहां विश्वासी अब भी हैं, परंतु वे गुप्त रूप में हैं, क्योंकि उन्हें घोर यातना दी जाती है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया 13वीं शताब्दी में भी थी और वह स्थान प्रचारक कलीसिया के लिए एक अति उत्तम प्रमोचन क्षेत्र है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया भी एक प्रचारक कलीसिया थी। मैं उसे नव जागृत कलीसिया कहता हूं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन में लौट आई थी और वचन की शिक्षा देती थी। मेरे प्रियो, इस बात से हम प्रोटेस्टेंट कलीसिया में भी देखते हैं। पिछली शताब्दी में उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना आरंभ कर दिया था और विकासमान होती जा रही थी। बाइबल अध्ययन नई बात नहीं है, परंतु आज वह विश्वासियों की पसंद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा रेडियो प्रसारित बाइबल अध्ययन परमेश्वर के वचन की रुचि की उठने वाली लहर पर उपस्थित है। तो आइए हम अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:7 को पढ़ें। लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, यह दूत वहां का पास्टर है, पुरोहित है, यह प्रभु यीशु का तरीका है। कहता है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इन संदेशों में से हर एक में प्रभु यीशु अपने महिमामय मसीह, हमारे महायाजक, जिसे हम अध्याय 1 में पाते हैं, महायाजक के दर्शन से कुछ न कुछ भेद की बात प्रकट करता है। वह कहता है कि वह पवित्र है, वह जन्म से ही पवित्र था, वह मरते समय भी पवित्र था, वह आज भी अपनी याजकीय सेवा में पवित्र है। उसके जन्म के संबंध में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, लुकार्ची सुसमाचार 1:35 में, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह मृत्यु में भी पवित्र था। प्रेरितों के काम 2:27 में लिखा है, तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। वह अपनी मृत्यु में पवित्र था और अपने पुनरुत्थान में भी पवित्र था। वह आज अपने महायाजकीय पद पर भी अति पवित्र है। इब्रानियों के पत्र 7:26 में लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। तब कहता है, जो सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य का अर्थ है सिद्ध एवं परिपूर्ण, सच्चा। मूसा ने सच्ची रोटी नहीं दी थी। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:32-35 में। यहां पर हम फिर देखते हैं, लिखा है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। यह कुंजी मृत्यु और अधोलोक की नहीं है, जैसा 1:18 में वह कहता है। यह उसके राजा, जगत का राजा होने का प्रतीक है। लुकार्ची सुसमाचार 1:32-33 में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। सहस्त्र वर्षीय राज्य में वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, परंतु आज वह स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरे उसके पांव की चौकी बनाए जाएं। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज केवल वही है जो खोल सकता है और बंद कर सकता है, और इस कारण वह हमारे लिए शांति दाता है। आप मत्ती रचित सुसमाचार 28:18-20 में इसे पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे देखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे प्रियो, फिलाडेल्फिया की कलीसिया परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ थी। अतः फिलाडेल्फिया की कलीसिया उस प्रत्येक कलीसिया की प्रतिनिधि है जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता और ईमानदारी से स्वीकार करके इसका पालन करती है। प्रभु यीशु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को उसके सात गुणों के कारण सराहता है। आइए हम देखें। पहला है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु हमसे फलों की आशा रखता है। वह विश्वासियों के जीवन में काम देखना चाहता है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8-10 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे मित्रों, यदि आपका विश्वास काम उत्पन्न नहीं करता तो अवश्य कोई समस्या है। याकूब एक महान प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। वह कहता है याकूब के पत्र 2 अध्याय के 18 पद में, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा तो मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यहां कर्मों से अभिप्राय सेवा है, न कि व्यवस्था में अनिवार्य कामों को करना। जॉन कॉल्विन का कहना था, विश्वास अकेला उद्धार लाता है, परंतु विश्वास जो उद्धार लाता है वह अकेला नहीं है। उद्धारक विश्वास कर्म उत्पन्न करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह द्वार प्रभु के आनंद या धर्मशास्त्र के ज्ञान का द्वार है। यदि उसने द्वार खोला है तो आपको उसमें प्रवेश करना है। आपको गवाही देना है और वचन का प्रचार करना है, सत्य को बताना है। मेरे विचार में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तीसरी बात वह कहता है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। ये वे विश्वासी थे जो संख्या में बहुत कम थे और उनके पास न तो आराधनालय था और न ही बड़े बड़े कार्यक्रम थे। हम प्रायः अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा सुनाना चाहते हैं। हम मसीह को ग्रहण करने वालों के पत्रों की चर्चा करने में प्रसन्न होते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं। परमेश्वर हर बात का लेखा रखता है। वह हमारे कामों को स्मरण रखता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय के 3 पद में पौलुस कहता है, मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। क्यों? उसके कहने का अर्थ है कि यदि उसे अपनी प्रशंसा करना हो तो वह प्रभु को ग्रहण करने वालों की संख्या बता सकता है और अपनी प्रचार सभाओं के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर का दृष्टिकोण भिन्न है। उसके विचार सुनने के लिए हमें स्वर्ग पहुंचने तक प्रशंसा करना है। चौथी बात कहता है, तूने मेरे वचन का पालन किया है। जी हां, जब प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार किया जा रहा था तब ये मसीही समुदाय प्रभु यीशु का सच्चा भक्त था। वे उसके ईश्वरत्व और मृत्यु का प्रचार करते थे कि वह हमारे स्थान पर मरा, हमारे पापों के लिए मरा। मेरे प्रियो, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को अनेक अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं, मिशनरी कलीसिया, सेवक कलीसिया, जीवंत कलीसिया आदि। ये सब नाम सच हैं। मैं उस कलीसिया को नवजागृत कलीसिया या बाइबल में विश्वास रखने वाली कलीसिया कहता हूं। प्रभु यीशु जिस बात पर बल देता है वह है, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अविश्वास और संशयवाद के उस युग में प्रभु यीशु उस कलीसिया की प्रशंसा कर रहा था कि उन्होंने उसके वचन का पालन किया। यह एक कलीसिया थी जिसने वचन का प्रचार किया और इन सातों कलीसियाओं में वह सबसे अधिक लंबे समय तक बनी रही थी। 13वीं शताब्दी तक यह कलीसिया थी जब तुर्कों ने आकर सब विश्वासियों को मार डाला। यह कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया थी, सेवा देने वाली कलीसिया थी। माना जाता है कि भारत में मसीही विश्वास के आगमन का कारण था कि इस कलीसिया ने यहां पर प्रचारक भेजे थे कि वे परमेश्वर के वचन को भारत में लाएं। मेरे प्रियो, आज आपकी कलीसिया क्या है? आपका जीवन क्या है? क्या आज आप प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, लोगों को बताते हैं? क्या आप गवाही देते हैं या आप एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं? इस कलीसिया के लिए प्रशंसा की बातें हैं, परंतु क्या आपकी कलीसिया के लिए, आपके जीवन के लिए प्रशंसा की बातें हैं? यदि नहीं तो आज इस पर विचार करना है ताकि आप भी उस वचन की सत्यता को दूसरों को बता सकें, ताकि आपके बताए जाने के द्वारा उसका जीवन उद्धार पाए और वह बच जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय भी लिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।